नियम सार, कारण कार्य नियम, पुस्तक दूसरी, लेक्चर नंबर 69। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वंचायाणम्, मूलोए सौवसाहूणम्, नमिऊणजिनम् वीरम् अनन्तवर्णानदं सणसहावम्, वोच्छामी नियमसारम् केवली सुद केवली भणिदम्। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह नियम सार नामक ग्रंथ है, उस पर पद्म प्रभमलधारी देव जी की जो टीका है, तात्पर्य वृत्ति, और उस पर पूज्य श्री कांजी स्वामी के प्रवचन हुए हैं। ये जो कारण कार्य नियम पुस्तक रूप से प्रसिद्ध है, आज से अपनी दूसरी पुस्तक प्रारंभ होती है। लेक्चर नंबर हम वही कंटिन्यूएशन में दे रहे हैं यहाँ पर, ये 69 नंबर का लेक्चर है। यहाँ पर पृष्ठ संख्या 1 है, दूसरी पुस्तक पृष्ठ संख्या 1। यहाँ शुरू करते हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत कुनकुंदाचार्य देव प्रणीत श्री नियमसार अध्यात्म युग पुरुष पूज्य श्री कांजी स्वामी ना श्री नियमसार ऊपर प्रवचन, आ बीजो भाग छे। अब यहाँ से शुद्ध भाव अधिकार शुरू होता है, तीसरा। पहला अधिकार कौन सा था? जीव अधिकार। और दूसरा अजीव अधिकार। अब ये शुद्ध भाव अधिकार यहाँ से शुरू हो जाता है। 38 गाथा कौन सा? वो अजीव में आ गए ना सब। अजीव अधिकार कहने से देखो, एक जीव द्रव्य कहेंगे तो बाकी 5 अजीव है, तो सबकी बात उन्होंने बता ली है ना। ये सब चर्चा हुई ना, काल द्रव्य की वगैरह बहुत चर्चा हो गई। अब यहाँ हम पढ़ते हैं 38 नंबर गाथा को पढ़ना है अपने को। अथ इदानीम शुद्ध भाव अधिकार उच्चते, यानी अब यहाँ शुद्ध भाव अधिकार कहते हैं। जीवादि बहित्तच्चम् हेयमादेयमप्पणो अप्पा कम्मोपादि समुद्भव गुणपज्जाये हि वदिरित्तो। जीवादि बहिस्तत्त्वम् हेयमुपादेयमात्मनः आत्मा कर्मोपादि समुद्भव गुणपर्यायैः व्यतिरिक्तः। छे बाह्य तत्व जीवादि सर्वे हेय आत्मा ग्राह्य छे, जे कर्मथी उत्पन्न गुण पर्यायति व्यतिरिक्त छे। ये संस्कृत जो है ना, व्यतिरिक्त कुछ गलत लिखा है, व्यतिरिक्त चाहिए, क पहले और बाद में तो। उन्होंने डबल तक किया और वो भी क के पहले लिख दिया। 38 है ना गाथा। व्यतिरिक्त रेगुलर लिखना है। जैसे गुजराती में लिखा है ना वैसे लिखो, या अक्त ऐसा हम लिखते हैं वैसा लिखो, एक बाजू तो एक बाजू को वैसा भी लिख सकते। व्यतिरिक्त अभी आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। वो प्रवचन प्रसाद 2 नंबर लाया है अपने, नियम सार 2 नंबर लाना था। कारण कार्य नियम, अभी इसके दूसरे भाग के लिए टाइम है अभी। हाँ गलत लाए, ये प्रवचन प्रसाद, ये प्रवचन वो पंचासिकाय के विवक्षर है। हाँ ये प्रवचन प्रसाद है, वो पंचासिकाय के लेक्चर से, और हम अभी नियम सार के ऊपर कारण कार्य नियम देख रहे हैं। अभी हम अन्वयार्थ पढ़ने जा रहे हैं, अभी आपको तो सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो दोनों में लेख और एक पुस्तक ले लो आप। देखो अन्वयार्थ पेज नंबर 2 ले लो ना, उसमें क्या है। देखो जीवादि बहिस्तत्वम, जीवादि बाह्य तत्व, हेय मैंने हेय छे, जीवादि सब कहा है ना, हम तो जीव को जीव तत्व को उपादेय कहते हैं, परंतु जब जीव तत्व को हेय कहा तो ये व्यवहार जीव जिसको नर नारकादि पर्याय उसको भी जीव कहते हैं, उसकी बात है यहाँ पर, वो बताएंगे। और जब हम 7 तत्व में जीव तत्व कहते हैं, वो सामान्य एक रूप जिसको हम कहेंगे शुद्ध आत्मा, उसको वहां जीव तत्व कहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग पद्धति से कथन आता है। तो जीवादि बाह्य तत्व हेय मैंने हेय छे, कर्मोपाधि समुद्भव गुण पर्याय ही, यानी कर्मोपाधि जनित गुण पर्यायोति, कर्मोपाधि जनित यानी जिसमें कर्म का निमित्त पाया जाता है, ऐसे जो गुण पर्याय है, गुणों की पर्याय जो है, गुण तो किसी कर्म के कारण नहीं होते हैं, परंतु यहाँ पर्याय की बात है। कहीं कहीं गुणों को पर्यायों को गुण भी कहा था हमने, आपको याद होगा तो, स्वभाव गुण विभाव गुण वगैरह, इसे केवल ज्ञान को स्वभाव गुण कहा था, मति ज्ञान को विभाव गुण कहा था, इस तरह से अन्य अन्य जगह अलग अलग अपेक्षा आती है, और पर्यायों में वो नर नारकादि पर्याय लिए थे, या गुण पर्याय कहने से द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय से दो भेद भी होते हैं, द्रव्यों की मिली जुली पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं, और हर गुण की जो पर्याय होती है उसको गुण पर्याय कहते हैं, एक ज्ञान की एक समय की पर्याय, दर्शन की एक समय, इसको गुण पर्याय कहेंगे, गुणों की पर्याय उसको गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय ने जो समान जातीय द्रव्य पर्याय ने स्कंद, और असमान जातीय द्रव्य पर्याय ने जीव और पुद्गल की मिली जुली अवस्था, जहां जो अपेक्षा है वहां उसको समझना है ना। देखो फिर से पढ़ते, कर्मोपाधि जनित गुण पर्यायोति व्यतिरिक्त, यानी उसको छोड़कर, उससे रहित, उससे व्यतिरिक्त यानी उससे रहित आत्मा, आत्मनः उपादेयम्, आत्मा ने उपादेय छे, यानी यहाँ जो कर्म से, जो कर्म के निमित्त से होने वाले भाव वो उसमें से नहीं लिए आत्मा में। देखो टीका पढ़ते हैं, आ हेय ने उपादेय तत्वना स्वरूपनु कथन छे, क्योंकि अभी शुद्ध भाव अधिकार चलेगा, तो इसलिए यहाँ कर्मोपाधि यानी कर्म के निमित्त से होने वाले भावों को जीव से जुदा कहा। अभी हम पढ़ेंगे और विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे।
यानी क्या, उपाधि यानी क्या, ये भी जरा समझाएं।
देखो 3 शब्द आते हैं शास्त्र में, एक है हेय, हे यानी छोड़ने लायक, त्याज्य। उपादेय, उपादेय के अलग अलग अर्थ में आता है, ग्रहण करने योग्य भी होता है, प्रकट करने योग्य भी होता है, इसको कहें ना, या पूर्ण प्रकट करने योग्य, जैसे हम कहेंगे संवर और निजरा कैसे है, प्रकट करने योग्य, पर वो एकदेश शुद्धता है, और मोक्ष पूर्ण शुद्ध अवस्था है, वो पूर्ण प्रकट करने योग्य है, और हमारा जो शुद्ध आत्मा है वो कैसा है, उपादेय, आश्रय करने योग्य उपादेय है। अब यहाँ हे यानी छोड़ने लगे, तो यहाँ तो जीवादि सब तत्व कह दिए, उसकी बात आएगी जीवादि में जीव किसको कहना। तो तीसरा एक आता है हेय हुआ, उपादेय हुआ, और एक होता है गेय। गेय ने जानने लायक, तो जानने लायक तो पूरा विश्व है, परंतु वो कैसे जानना है अपने को उपादेय रूप से, और ये पर को कैसा जानना है, ये मैं नहीं हूं ऐसा जानना है। हम पर को जान रहे हैं पर रुचिपूर्वक जान रहे, उसमें राग द्वेष की बात हो रही है, उसको जानना नहीं कहते। हमें कैसा जानना है, ये पुद्गल है मैं नहीं हूँ, ये मेरा कार्य नहीं है, ना मैं इसका करता हूँ ना भोगता हूँ, इसको ऐसा जाना तो हमने सही जाना। फिर वो जानकर उसको हेय भी कहेंगे कहीं कहीं, अजीव तत्व को भी कहीं गेय की अपेक्षा आती है और कहीं उसको हेय भी कह देते हैं, क्योंकि वो अपने में है नहीं है, इसलिए वो उसका लक्ष्य छोड़ने लायक है, उसको भी हेय कह देते हैं। अब यहाँ कौन सी अपेक्षा वो पढ़ेंगे। टीका, आ हेय ने उपादेय तत्वना स्वरूप नु कथन छे। देखो हेय और उपादेय ये श्रद्धान में लेना है, क्योंकि ज्ञान करने के लिए तो सारे तत्व ज्ञान के गेय तो है ही, परंतु श्रद्धान में लेना है। जैसे यहाँ जब कहते हैं पुण्य छोड़ने लायक है, तो छोड़ने लायक है ये श्रद्धान में लेना है। हम छोड़ने लायक है ऐसा जब सुनते हैं तो क्या करते हैं, पुण्य छोड़ देते हैं। हाँ, जो प्रतीति में लेना था वो तो प्रवृत्ति में करना चाहते हैं, इसलिए वो उपदेश हमने सही नहीं सुना। क्योंकि हम जब बेटी पैदा हुई तब क्या नक्की किया, ये पराया धन है, तो पराया धन है तो कब छोड़ेंगे उसको पराया। तो उसको पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छे काबिल बनाया, फिर योग्य जो कोई हम देखते हैं तो उसको वहाँ शादी करके उसको फिर भेज देंगे, परंतु नक्की कब किया, जब जन्मी तब। ऐसे ही पुण्य को है ये कहेंगे तो छोड़ने लायक है, तो छोड़कर क्या करना है, तो शुद्ध स्वभाव में रहने लायक है। वो अस्थिरता इतनी होती कि बारंबार जीव इन शुद्ध उपयोग से बाहर आता है, तो कभी शुभ अशुभ होते ही रहते हैं। परंतु मान्यता में कैसा लेना है, ये छोड़ने लायक है, यानी ये करते रहने से मोक्ष होगा, ऐसी किसी की मान्यता होगी, क्योंकि मैंने इतने व्रत किए, मैंने इतनी पूजाएं की, मैंने ऐसा किया, ये तप किया, और इसके कारण मुझे ये बाह्य तप की बात है, और इसके कारण मोक्ष होगा, तो ये बात सच्ची नहीं है। वो पुण्य है और उससे बंध होता है, उससे मुक्ति नहीं होती, ये नक्की करना है, ये मान्यता में रखना है। प्रवृत्ति छोड़ देने की बात नहीं यहाँ पर, वो प्रवृत्ति भी छोड़ देंगे तो अशुभ में चले जाएंगे। ये किस में लेने, मान्यता में, क्योंकि ये बात छूटती है ना तो लोगों को विरोध करते हैं। देखो आप सबको स्वच्छंदी बना रहे हो पुण्य को है ये कहकर, स्वच्छंदी नहीं बना रहे, मान्यता में ये लेने की बात थी, और लोग उसको प्रवृत्ति में मान लेते हैं, बराबर सुनते नहीं है तो उनको विरोध लगता है। अब यहाँ कहते हैं देखो, जीवादि सात तत्वों नो समूह परद्रव्य होवाने लीधे खरेखर उपादेय नथी। साते तत्वों को किया क्योंकि ये कैसे पर्याय रूप भाव है, ये सब यानी मोक्ष भी पर्याय वो सब, क्योंकि वो वहां पर भी कर्मों के अभाव की अपेक्षा तो आती ही है, इसलिए साते तत्वों को कहा। और जो नित्य ध्रुव स्वभाव है उसको उपादेय कहेंगे। यहाँ पर देखो, जीवादि सात तत्वों नो समूह परद्रव्य होवाने लीधे खरेखर उपादेय नथी, उसको परद्रव्य कहा, पर के निमित्त से होने वाले भावों को परद्रव्य में डाल दिया। सहज वैराग्य रूपी महल ना शिखर नो जे शिखामणि छे, शिखामणि समझते ना, मुकुट का जो रत्न होता है उसको शिखामणि कहते हैं। टोच ऊपर नो रत्न चूड़ामणि, कलगी नो रत्न, तो सहज वैराग्य रूपी महल ना शिखर नो शिखामणि छे, परद्रव्य थी जे परांगमुख छे। अब ये किसकी बात चल रही, आत्मा किसको कहना, उसकी बात है। आत्मा उपादेय है ऐसा भी कहने वाले हैं, तो उस आत्मा का यहाँ वर्णन चल रहा है। ये आत्मा कैसा है, तो वैराग्य रूपी महल ना शिखर नो शिखामणि छे, परद्रव्य थी जे परांगमुख छे। परांगमुख है ने, परद्रव्य से उसका लक्ष्य हट गया है, पांच इंद्रियों ना फैलाव रहित देह मात्र जेने परिग्रह छे, जे परम जीने योगीश्वर छे, स्वद्रव्यमां जेनी तीक्ष्ण बुद्धि छे, एवा आत्मा ने आत्मा खरेखर उपादे छे। एवा आत्मा ने वो मुनियों की बात की कि जिनको देह मात्र परिग्रह है, ऐसा मुनियों की बात की, अन्य कोई भी परिग्रह उनके है नहीं है, देह मात्र वो भी परिग्रह। क्यों? अभी देह तो नहीं छूट रहा है ना, अभी तो वर्तमान में देह सहित है, परंतु उसके प्रति कोई ममत्व भाव नहीं है। तो ये परम जिन योगीश्वरों की बात चल रही है कि जो जिनको परम वैराग्य है, परद्रव्यों से जो परांगमुख है, यानी पांचों इंद्रियों में कोई उनके जो लगाव नहीं है, जिसको हम कहते इंद्रिय विजय वाले है, तो पांच इंद्रियों ना फैलाव रहित देह मात्र जेने परिग्रह छे, जे परम जिन योगीश्वर छे, यानी मुनिराजों की बात है, और स्वद्रव्यों में जेनी तीक्ष्ण बुद्धि छे, यानी बारंबार उपयोग वो अपने स्वद्रव्य में लगाते हैं, ऐसे जीवों के लिए एवं आत्मा ने आत्मा खरेखर उपादेय छे। हम कहते हैं कि ये कैसा है, आत्मा उपादेय है, और बाकी कैसे है, तो है ये है, तो हमने वो तो पोपट पंची के, पोपट पंची समझते, टोटा रतन क्या कहते हैं, यानी केवल याद कर दिया, पोपटियो पोपटियो ज्ञान, हाँ, यानी कहने मात्र के लिए। वो खरेखर उसने उपादेय कहाँ किया? अगर उसका लक्ष्य करेंगे, परद्रव्यों का लक्ष्य छोड़ेंगे, उसमें स्थित हो जाएंगे, तो हमने उपादेय किया। उपादेय कहने के लिए नहीं होता है, उसका अनुभव करके उसी में बारंबार स्थित रहने से हमने उसको उपादेय कर दिया है। नहीं तो उपादेय बोलने के लिए उपादेय सच्चा उपादेय नहीं माना है। तो कहते तेने ते उपादेय छे, खरेखर उपादेय छे। औदयिकादि चार भावांतरों ने अगोचर, भावांतर देखो, नीचे देखो, नीचे उसका एक्सप्लेनेशन, भावांतर ने अन्य भाव, यहाँ शुद्ध भाव से जो अन्य भाव है, और कर्मोपाधि यानी जहाँ कर्म का निमित्त होता है, ऐसे कौन कौन से भाव है? तो कहते हैं औदयिक, यानी जहाँ कर्म में कर्म का उदय है, और ये औदयिक जीव का अपना भाव है, जीव के अपने से हो रहा है, कर्म से नहीं हो रहा है, जीव स्वयं उस रूप परिणमित कर रहा है, वो जीव का अपराध है, परंतु यहाँ निमित्त की तरफ से नाम दे रहे हैं। जैसे एक कार्य होता है तो उपादान की तरफ से उस कार्य को उपादेय कहते, ये वाला उपादेय नहीं, हा? वो उपादान उपादेय वाला, और निमित्त की तरफ से उसी कार्य को नैमित्तिक कहते, कार्य एक नाम दो, क्योंकि कारण दो है। जैसे घड़ा बना तो कौन उस रूप परिणमित हुआ? मिट्टी, तो मिट्टी उपादान है और घड़ा उसका उपादेय है। कुम्हार को यहाँ निमित्त कहते हैं, तो कुम्हार की तरफ से इस घड़े को क्या कहेंगे? वो कुम्हार का नैमित्तिक है। कुम्हार और घड़े में कैसा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक, इसको नैमित्तिक कहते हैं। तो यहाँ कर्मों में उदय रूप अवस्था है, तो जीव के अपने जो भाव है, जीव उस रूप परिणमित हुआ है, परंतु उस भाव को कहेंगे औदयिक। कर्मों में जहाँ उपशम रूप अवस्था है, जीव का अपना जो भाव है, उसको कहेंगे औपशमिक। कर्मों में क्षोभम रूप अवस्था है, तो जीव के भावों को यहाँ वो क्षोभमिक कहेंगे। वो कर्म ने उत्पन्न नहीं किए है, जीव के अपने भाव है। और कर्मों में क्षय रूप अवस्था है, वहाँ जीव का जो अपना भाव है, जैसे केवल ज्ञान वगैरह, वो क्षायिक भाव। ये निमित्त नहीं, निमित्त की तरफ से ये सारे नैमित्तिक भाव है। नाम उसको निमित्त की तरफ दिए है, परंतु है तो जीव के अपने भाव, होते तो अपने उपादान से, परंतु ये कैसे है? पर्याय रूप भाव है, और उसमें कर्मों की कोई ना कोई अपेक्षा आती है। यहाँ क्या कहते हैं? अन्य भाव कौन से है? नीचे फुटनोट, औदयिक, औपशमिक, क्षौपशमिक, अनेक क्षायिक, ये चार भावों परम पारिणामिक भाव थी अन्य होवाने लीधे। हमने जीव के पांच भाव देखे, ये सारे जीव के पांच असाधारण भाव है, अन्य द्रव्यों में नहीं होते, ये असाधारण कहने में आते हैं। पर ये जो परम पारिणामिक भाव जो है, जीव का शुद्ध भाव है, उससे ये जुदे है, इसलिए उनको भावांतर कहा। परम पारिणामिक भाव जेनो स्वभाव छे, उसमें किसी कर्म की कोई अपेक्षा नहीं आती, ना उदय की, ना क्षय की, ना उपशम की, ना कुछ। ये इसको पारिणामिक भाव, जीव का स्वभाव भाव कहते हैं। एवो कारण परमात्मा, उसको कारण परमात्मा का क्या कहते हैं? परम पारिणामिक भाव जेनो स्वभाव छे, एवो कारण परमात्मा। पहले पुस्तक में वो हम कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा की चर्चा हुई थी अपने। कार्य परमात्मा यानी जो परमात्मा दशा प्रकट होना, वो कार्य परमात्मा है। उसका कारण कौन है? तो विद्यमान है वो पारिणामिक भाव स्वरूप से। तो परम पारिणामिक भाव जेनो स्वभाव छे एवो कारण परमात्मा आ चार भावांतरो ने अगोचर छे। यानी चार भावांतर यानी अन्य भाव है, और ये परम पारिणामिक भाव जुदा है, उससे डिफरेंट है। ऊपर हम पढ़ते हैं जहां से दो नंबर का फुटनोट की साइन हमने देखी थी, ये चौथी लाइन। औदयिक आदि चार भावांतरों ने अगोचर हुआ थी, यानी उसके द्वारा नहीं जानने में आ रहे, अगोचर हुआ थी। जे कारण परमात्मा, यानी वो कैसा लिया? परम पारिणामिक भाव जनो स्वभाव छे, वो जे कारण परमात्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म अने नो कर्म रूप उपाधि थी जनित विभाव गुण पर्याय विनानो छे। क्या कहना चाहते हैं? द्रव्य कर्म किसको कहेंगे मालूम है आपको? बोलो। आठ कर्म। कौन से आठ कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, इनको कहेंगे द्रव्य कर्म। ये पुद्गल से बने हैं, उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। भाव कर्म किसको कहना ब्रह्मा? मोह राग द्वेष परिणाम, जीव के विभाव परिणाम जो है मोह राग द्वेष, उसको भाव कर्म कहते हैं। और नो कर्म, शरीर मन वाणी, ये है नो कर्म। तो क्या है ये? द्रव्य कर्म, भाव कर्म अने नो कर्म रूप उपाधि, उससे जनित यानी ये निमित्त लिए है, उसके कारण जो उत्पन्न होते हैं। क्या है? विभाव गुण पर्यायो विनानो छे। कौन? कारण परमात्मा। कारण परमात्मा ये विभाव गुण पर्यायो विनानो छे, यानी उसमें कर्म जनित में ये तीनों कर्म लिए। वहां तो हमने केवल कर्म के उदय में वो बात, बाकी बातें ये जो औदय का औपशमिक वगैरह, उसमें तो भाव कर्म नो कर्म सब कुछ ले लिए। तथा अनादि अनंत अमूर्त, ये अमूर्त का अर्थ समझते हैं क्या है? आकार तो है, जीव को आकार है अपना, क्योंकि वो प्रदेश तो गुण है, तो हर एक द्रव्य को अपना अपना आकार है। अरूपी द्रव्य को भी आकार होता है। अमूर्तिक, अमूर्तिक का अर्थ हमने क्या देखा? गए हफ्ता भर से रोज देख रहे हैं। हाँ, अरूपी यानी अमूर्तिक। अरूपी कहो अमूर्तिक कहो एक ही बात है। किसको कहना अमूर्तिक? उसका लक्षण क्या है अमूर्तिक का? हाँ, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। अमूर्त द्रव्य तो पांच है, धर्म अधर्म आकाश काल भी अमूर्त है। यहाँ जीव की बात चल रही है। कैसा है जीव? देखो अनादि अनंत है, प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, अमूर्त है। अनादि अनंत और अमूर्त कहेंगे, इतना ही कहेंगे तो पांचे द्रव्य कहेंगे हम भी अनादि अनंत है और हम भी अमूर्त है। धर्म द्रव्य भी कहेगा मैं भी अनादि अनंत हूँ, मैं भी अमूर्त हूँ। अधर्म द्रव्य भी कहेगा ऐसा ही। आकाश द्रव्य का सब आगे आ जाएंगे। पन कहते अतीन्द्रिय स्वभाव वालो, ये अतीन्द्रिय यानी वो जानने वाला है ना, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव वाला है, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद वाला है वो। तो फिर बाकी सब द्रव्य पीछे हटेंगे। तो अतीन्द्रिय स्वभाव वालो शुद्ध सहज परम पारिणामिक भाव जेनो स्वभाव छे एवो कारण परमात्मा ते खरेखर आत्मा छे। आत्मा ने मैं किसमें स्थापित करना है? तो इस आत्मा में मैं पना स्थापित करना है, उसको खरेखर आत्मा कहा। अति आसन्न भव्य जीवों ने, आसन्न ने नजदीक, किसके नजदीक? मोक्ष के नजदीक। और वो भी कैसे आसन्न भव्य लिए? अति आसन्न भव्य यानी जिनका मोक्ष निकट आया है। एवं अति आसन्न भव्य जीवों ने एवा निज परमात्मा सिवाय बीजू काई उपादेय नथी। यह मुख्यतः मुनिराजों को लिया है, उसी भव में या एकाद और भव करके मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे अति आसन्न भव लिए, तो वो तो बारंबार अपने निज स्वरूप में ही लीन है, अति आसन्न लिए। मुनिराजों को ही लिया, शायद उसी भव में मोक्ष जाने वालों के लिए है, क्योंकि उनके लिए तो वो शुभ भाव जो 28 मूल गुण के वो भी उनके लिए कार्यकारी नहीं है, बस अपने में स्थिर हो जाएंगे तो क्षपक श्रेणी चढ़कर अरिहंत अवस्था प्राप्त करेंगे।
देखो मुझे कुछ बोलना है। यहाँ पर अभी हमने देखा था नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इनसे रहित ऐसा कौन हो सकता है? दक्षा बहन और मनीषा बहन में से कोई भी उत्तर देवे। सिद्ध परमात्मा, आप क्या कहती हैं? हाँ देखो देखो, अभी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सिद्ध परमात्मा जो है वह स्वयं कैसे हैं, तो एकदम शुद्ध है। पर्याय में भी शुद्धता है, क्योंकि पर्याय में उनको नौ कर्म नहीं है, शरीर मन वाणी नहीं, आठ कर्म नहीं है, और क्या है, भाव कर्म यानी राग द्वेष के परिणाम भी नहीं है। तो पर्याय में ये नहीं है, इसलिए सिद्ध अवस्था में वो एकदम जिसको हम कहते हैं प्योर है, शुद्ध है। तो इसीलिए हम उनको नमन करते हैं कि जो पर्याय में उनकी शुद्धता है। हमारी मान्यता क्या है कि आत्मा है तो आत्मा को नमस्कार करो, ख्याल भी है? वो जो अपने घर में कॉकरोच रहता है वो भी आत्मा ही है, तो उसको नमस्कार करते कि नहीं तुम? खटमल होता है उसको, यानी हम अपना जो जिसको हम कहते हैं मान्यता में थोड़ा सा फर्क है कि पर्याय में जो शुद्धता जिन्होंने प्रकट की है वे ही वंदनीय है, इसलिए हम अरहंतों को और सिद्धों को नमस्कार करते हैं। और जो आचार्य उपाध्याय साधु है वो एक देश उनमें शुद्धता है, तीन कषाय चौकड़ी भी नहीं है, उसके जाने से उनमें वितरकता आई है, इसलिए उनको नमस्कार करते हैं। और हमने क्या माना कि सभी आत्मा ही हैं, सभी परम, यहाँ जो वर्णन किया है वो आत्मा का ही किया है, आत्मा यानी जो परम पारिणामिक भाव है उसकी बात ही की है, लेकिन उसके साथ साथ हम किसको नमन करते हैं इसका स्वरूप जब तक हमारे ज्ञान में नहीं आता है तो हमारा वो नमन या जो क्या बोलते हैं आत्मा 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 हमने बहुत रट लिया, तो अभी वो जो पोपटियो है वो ख्याल में। तो मैंने आपको इसलिए ये विषय निकाला, क्योंकि विषय इसलिए निकाला कि पर्याय में शुद्धता उन्होंने प्रकट की है और इसलिए वे वंदनीय है। अभी लौकिक में भी हम देखते हैं कि जो बहुत पैसे वाला होगा उसने पैसा कमाया है, इसलिए गरीब लोग उसको जाते आते नमस्कार करते हैं, क्योंकि पर्याय में उन्होंने जो कुछ पाया है वो मेरे पास नहीं है, इस बात की उनको ख्याल आता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा देखा जाता है। तो हमारे पास ये तीन क्या क्या है, तीनों में से क्या, कौन से तीन? नौ कर्म है आपके पास, यानी वो शरीर मन वाणी मेरा स्वभाव नहीं है, फिर भी मैंने मान रखा है कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, शरीर रूप मैं हूँ, ये सारी जो बातें होती है वो अपना स्वरूप समझने के लिए हमने बारंबार पढ़ना है, ख्याल में आया ना? एक बार कहने से अगर कोई समझ लेता है तो क्यों बारंबार कहने की आवश्यकता पड़ती है? घर में भी बच्चे नहीं सुनते तो हम उसको समझाते हैं ना दो चार बार, इस तरह से। आगे।
हाँ देखो, अभी आपने तो पर्याय की बात सुनी और यहाँ बात किसकी हो रही है, द्रव्य स्वभाव की। आत्मा किसको कहना, तो परम पारिणामिक भाव रूप जो कारण परमात्मा है, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के कारण जो कुछ जीव में विभाव पर्याय उत्पन्न हो रही है उसको यहाँ विभाव गुण पर्याय कहा। तो उसमें तो क्षायिक भाव वाले पर्याय को भी वहां उसमें जीव में नहीं ऐसा लिया, ऐसा जीव लेना है, ऐसा जीव ने अपना स्वभाव भाव लेना है। तो ये जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रूप उपाधि थी जनित ऐसे जो विभाव गुण पर्याय है और ऐसे विभाव गुण पर्याय जिसमें नहीं है, ऐसा परम पारिणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वो आत्मा है। तो वो आपके पास है क्या? नहीं है, है पक्का है, परंतु जब तक उसका लक्ष्य नहीं किया है, इन भावों का लक्ष्य छोड़कर उसका जब तक लक्ष्य नहीं किया है तब वो है नहीं है, बराबर है। तो है क्या, उपयोग क्या है? उसकी प्रतीति नहीं हुई, उसका अनुभव नहीं हुआ। जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक प्रतीति नहीं होगी, प्रतीति नहीं तब ना सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, नहीं तब तक इसमें एकाग्रता स्थिरता भी नहीं होगी। जो पहले बताया था ना, आपके घर में आपके किसी पूर्वजों ने धन गाड़ के रखा है, सोने के मोहरे है, आपको पता नहीं है, तो आप उसके मालिक हो के नहीं हो, है, परंतु उसका कुछ यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? नहीं के बराबर है ना आपके लिए, मालूम ही नहीं है तो नहीं के बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो टीका हुई, अब प्रवचन पढ़ेंगे। 3 नंबर के पृष्ठ पर आ नियम सार कुंदाचार्य कहे छे कि मैं मारी भावना माटे बनावी छे। देखो पंचास शिकाय वगैरह तो बेस है, परंतु यहाँ तो खास नियम सार जो है उन्होंने अपने स्वयं की बात अपने स्वयं के लिए बनाया है। बीजा ग्रंथ में आओ शब्द क्या है आयो नहीं। कुंदाचार्य जो महान आचार्य हो गए उनका 3रे नंबर पर नाम लेते हम कि मंगलम भगवान वीरो यानी महावीर भगवान, मंगलम गौतमो गणी गौतम गणधर, 3जो नंबर मंगलम कुंद कुंदार्यो। एक कुंद कुंदाचार्य कहे चे ये बंद हुआ है, हाँ। के कहे छे के मैं मारी भावना माटे आ नियम सार बनावी छे। आ शुद्ध भाव अधिकार छे, ए शुद्ध भाव पर्याय नी वात नथी। क्या कहा अभी आपको समझाने के लिए, वो पर्याय की बात उठाई थी, परंतु यहाँ जिसको शुद्ध भाव कहते हैं वो पारिणामिक भाव रूप शुद्ध भाव की बात है कि जिसका लक्ष्य करने से पर्याय में शुद्धता उत्पन्न होगी। पेज नंबर 3 आपका ऐसा प्रश्न है, पहले नंबर पर वीर भगवान यानी महावीर भगवान को लिया क्योंकि वो अंतिम तीर्थंकर हैं, हम उनके शासन में हैं। तो उनके बाद गौतम गंधर्व को क्यों लिया, बाकी तीर्थंकरों को क्यों नहीं लिया आपका प्रश्न, पर हमने जो हम महावीर के शासन में हैं तो महावीर के बाद और कौन कौन हुए उनके नाम लेना है, वो बाकी तीर्थंकर तो पहले हो चुके हैं उसके बाद नहीं है। तो वीर भगवान की बात हमारे तक शास्त्र रूप रचना किसने की, तो गौतम गंधर्व ने की, इसलिए गौतम का नाम दूसरा लिया। अब उसके बाद दिगंबर आचार्यों ने कुंदकुंदाचार्य की बात महत्व से लेती है, लेते इसलिए है कि उसके बाद क्या हुआ था कि जैनियों में 2 पंथ पड़ गए थे, दिगंबर श्वेतांबर। तो जो दिगंबर आचार्यों के लिए यहाँ कुंद, तो 3जे नंबर पर मंगलम कुंद कुंदार्यो, कुंद कुंदाचार्य को या कुंद कुंदा आदि ऐसा लेते हैं उसमें, क्योंकि वहां जो सनातन मूल पंथ की जो धारा चली आई थी वो कुंद कुंदाचार्य के द्वारा और आगे बढ़ी, इसलिए उनका नाम 3रे नंबर पर लेते हैं। फिर जैन धर्मोस्तु मंगलम। देखो यहाँ किसी का पक्ष लेने की बात नहीं है, हम जिस पंथ में जन्मते हैं ऐसा लगता है नहीं हम ही सच्चे हैं, हमें उससे नहीं लेना है, हमें तत्वों के अनुसार चलना है, क्योंकि इसमें हमारा अपना निजी कल्याण की बात छुपी हुई है। यदि हम यहाँ नहीं, क्योंकि कहाँ जन्म लेना ये तो कुछ सोच समझ कर तो नहीं लिया था, जो कुछ होना है वो जन्म लिया है। परंतु जब ये सच्चे तत्व सुनते हैं तो हमें नक्की करना है कौन से सत्य है। केवल हे हमारे है इसलिए सत्य है, तुम्हारे वो खोटे, ऐसा बिल्कुल इसमें नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। क्योंकि मनुष्य भव इतना दुर्लभ है और ऐसे दुर्लभ मनुष्य भव में ये सत्य बात सुनने को मिली है तो उसको एक्सेप्ट करने में उसमें कोई पीछे हटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिनके प्रवचन हम पढ़ रहे हैं कांजी स्वामी, तो स्थानकवासी संप्रदाय में जन्मे थे। इतना ही नहीं, वहाँ की मुनि दीक्षा ली थी उन्होंने, 45-45 वर्ष तो वहाँ रहे थे। उनके सभी करोड़ों हजारों जितने शास्त्र है सब स्वर्णकवासी और श्वेतांबरों के सभी उन्होंने पढ़े थे। और उसके बाद जब समय सार हाथ में आया तो उनको लगा कि नहीं, ये अशरीरी होने का शास्त्र है। फिर उन्होंने अभ्यास किया उसका, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अन्य ग्रंथों का, और फिर नक्की किया कि दिगंबर जैन धर्म ही सत्य धर्म है। और फिर उन्होंने वो अपना पक्ष त्याग कर दिगंबर, मैं अभी दिगंबर हूँ ऐसा उन्होंने नक्की कर दिया। तो हमें अपना कल्याण करना है कि नहीं करना, ये पहले नक्की करना है। अभी तक हमने कुछ अन्य माना था और अभी कुछ अन्य मान रहे हैं तो क्या होगा, हमारे बाकी क्या कहेंगे हम, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इसके लिए हमारा भव फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इतना दुर्लभ, अभी आप सुबह तो सुन रही हो कि कहाँ कहाँ एक इंद्रियों में कितने भव, द्विंद्रिय आदि में कितने, कहाँ कहाँ काल घुमा कर रेयरली मनुष्य भव मिलता है। त्रस पर्याय 2000 सागर की, उसमें भी हो सकता है एक भी मनुष्य पर्याय न मिले, बिल्कुल हो सकता है। तिर्यंश तो होता ही है, देवनारकी भी होता है, परंतु एक भी भव मनुष्य का न मिले ये पॉसिबल है। यानी मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभ में दुर्लभ है और हमें मिली है, और हमें सत्य बाद भी मौका मिला है सत्य बात श्रवण का, तो उसको सही रूप से उसको सुनकर निर्णय तक पहुंचना हमारा कर्तव्य है। ये तो हम कहेंगे कोई महान पुण्य का उदय जिसको है उसी को ऐसी सत्य बात हाथ में आ जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कहते हैं, ये आपके प्रश्न का उत्तर कि दूसरा नंबर उनका नाम क्यों लिया गौतम गंधर्व का और तीसरा कुंदकुंदाचार्य का क्यों लिया, ये उसका उदाहरण है, उसका कथन है। देखो ये शुद्ध भाव अधिकार है, यहाँ क्या लिखते हैं देखो चौथी लाइन लास्ट में, ये शुद्ध भाव पर्यायनी बात न थी। देखो पर्याय में क्या होता है, या तो शुभ है या अशुभ है या शुद्ध है। शुभ अशुभ तो समझते हैं ना, शुभ भाव अशुभ पुण्य पाप जिसको हम कहेंगे। और ये शुद्ध भाव क्या होता है, तो पुण्य पाप से रहित ऐसे वितराग भाव अंतरंग में स्थिरता है, शुद्ध उपयोग जिसको कहेंगे उसको शुद्ध भाव कहेंगे, वो पर्याय वाला शुद्ध भाव है। और यहाँ जिस शुद्ध भाव की बात हो रही है जिसको आत्मा कहा है, वो पारिणामिक भाव की बात चल रही है, कारण परमात्मा की बात चल रही है, ये उसका। हाँ, वो तो शुद्ध भाव जिसको कारण परमात्मा, जिसको आत्मा कहा है, जिसके लक्ष्य से एक शुद्ध भाव पर्याय है और एक शुद्ध भाव, यहाँ जो शुद्ध भाव अधिकार है वो स्वभाव रूप की बात है। स्वभाव भी शुद्ध भाव है, यहाँ त्रिकाली स्वभाव की बात है। हाँ, जिसके लक्ष्य से पर्याय शुद्ध होने वाली है, जिसका लक्ष्य करने से पर्याय में शुद्धता उत्पन्न होगी उसकी बात है, कारण परमात्मा की बात है ना। कारण परमात्मा के लक्ष्य से वो कार्य परमात्मा प्रकट होगा, कारण है उस कारण में से कार्य प्रकट होगा। तो यहाँ क्या लिखते देखो, ये शुद्ध भाव पर्याय नी बात न थी। शुद्ध भाव ऊपर नाम छे ने, ये अधिकार का नाम है शुद्ध भाव अधिकार। ते शुद्ध भाव शुद्धोपयोग नी बात न थी, क्योंकि शुद्धोपयोग ने पर्याय, हम कहते ना उपयोग के तीन भेद है, एक शुद्ध उपयोग और एक अशुद्ध। अशुद्ध में से दो भेद किए, अशुद्ध उपयोग के दो भेद, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। शुभ उपयोग किसको कहें, जो देव शास्त्र गुरु वगैरह का उपयोग करके जो हम उसमें उसके प्रति भक्ति वगैरह अभी शास्त्र पढ़ना सुनने का जो भाव है वो कैसा है, शुभ भाव है। और बाकी दुनियादारी के, बाकी सब खाने पीने के और पैसा कमाने के, वो भाव कैसे, अशुभ भाव है। और इनको छोड़कर जब जीव अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, शुद्धोपयोग होता है, उसको शुद्ध भाव कहेंगे, शुद्धोपयोग कहेंगे। उसकी बात ये नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाव, यहाँ क्षायिक भाव को भी उससे अलग कर दिया है, वो तो शुद्ध ही है ना, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। हाँ देखो, शुद्ध भाव पर्याय की बात नहीं, शुद्ध भाव ऊपर नाम छे ने, ते शुद्ध भाव शुद्धोपयोगनी अहीं वात नथी। अहीं अने इस गाथा में यहाँ पर अशुभ राग अने शुभ राग बन्ने अशुद्ध छे। क्या कहा? भगवान की भक्ति वाला भाव कैसा है, शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ बोलो बोलो, आप क्या कहते हैं? ये तप करने का भाव आप कर रहे हैं, वो कौन सा भाव है, शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ अशुद्ध, क्योंकि अशुद्ध के दो भेद, शुभ और अशुभ, और उससे मेरा कल्याण होगा, उससे मैं मोक्ष प्राप्त होगा, अगर ऐसी मान्यता होगी उसको मिथ्यात्व कहेंगे, और वो मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा पाप है। यानी कर रहे इतना सा पुण्य और मान्यता के कारण इतना बड़ा पाप लेके घूम रहे, क्योंकि इससे मैं ये करते करते मेरा कल्याण होगा ये मान्यता है, क्यों कर रहे हैं हम उसको? धर्म समझ कर रहे हैं, तो क्या ये धर्म है क्या? पर्याय में जो धर्म है वो तो शुद्ध भाव रूप है, पर्याय वाला धर्म वो शुद्ध भाव पर्याय वाला है। हाँ, और ये कैसा भाव है? अशुद्ध भाव है, इससे क्या होगा? बंद होगा, समझ? यानी ये छोड़ने लायक भाव है, ये मान्यता में रखना है। अगर मान्यता में इससे कल्याण हो रहा है, ऐसा अगर मान्यता से कर रहे हैं तो वो तो मान्यता खोटी है, क्योंकि मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा पाप है, वो हिंसा झूठ चोरी वो सब पापों से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व का पाप है, जो लगता ही नहीं वो पाप रूप है, क्योंकि पता ही नहीं ना उसका स्वरूप क्या है। यहाँ क्या कहते, देखो, अशुभ राग अने शुभ राग बनने अशुद्ध छे, अने राग रहित चिदानंद भगवान आत्मानो उपयोग शुद्ध छे। ये उपयोग यानी पर्याय की बात है, कौन सा आत्मा? राग रहित चिदानंद भगवान आत्मा, जिसको हम त्रिकाली स्वभाव कहते हैं, उसका उपयोग करना यानी उसका लक्ष्य करके उसमें स्थिर हो जाना वो शुद्ध है, यानी जिसको हम शुद्ध उपयोग कहेंगे वो पर्याय की बात है। एनी वात अहियां नथी, यहाँ क्या नहीं है वो पहले बता रहे हैं, क्योंकि उसके साथ यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। ए शुद्ध पर्याय नी वात छे, अने आ यानी इस अधिकार के आ शुद्ध भाव द्रव्य नी वात छे। समझ में आती है बात, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? ये शुद्ध उपयोग रूप शुद्ध पर्याय की यहाँ बात नहीं है, यहाँ बात वो पारिणामिक स्वभाव रूप जो कारण परमात्मा रूप जो भाव है उसकी बात यहाँ चल रही है। ये शुद्ध भाव द्रव्य निवाच छे, वस्तु छे, वस्तु भाववान, ये भगवान ने कहा, क्या लिखा है? भाववान यानी भाव वाला, जिस भाव स्वरूप, क्या वस्तु कैसी होती है? वस्तु उसके अपने भाव से युक्त होती है, ये शुद्ध भाव स्वरूप छे। त्रिकाण ध्रुव, ध्रुव यानी नित्य कायम रहने वाला जो स्वभाव भाव उसमें है, भाववान आत्मा एनो भाव शुद्ध भाव, ये त्रिकाण स्वभाव छे। देखो पर्याय तो क्षण मात्र होती है, समय मात्र होती है, वो पलटती ही है, वो विभाव हो स्वभाव है उसकी बात नहीं है, त्रिकाली कायम एक रूप रहने वाले स्वभाव की बात है यहाँ पर। उसको भाववान कहा, और उसका भाव क्या है? शुद्ध भाव, भाववान आत्मा है और उसका भाव, उसको यहाँ शुद्ध भाव कहा। ये त्रिकाण स्वभाव छे, त्रिकाण तीनों काल कायम रहने वाला स्वभाव। देखो स्वभाव कोई उत्पन्न नहीं कराता, क्योंकि स्वभाव उसी को कहते जो अनादि अनंत उस द्रव्य में विद्यमान है, स्वभाव में कोई मर्यादा नहीं होती, वो स्वयं सिद्ध होता है और कायम एक जैसा होता है, स्वभाव में थोड़ी कमी हो गई थोड़ा ज्यादा हो गया ऐसा कभी नहीं होता। और वो त्रिकाल रहता है, त्रिकाल एक सदृश रहता है। तो कहते भाववान ध्रुवपणु अथवा आत्मापणु जे त्रिकाली ज्ञायक भाव, ये पूरे आत्मा का भाव को त्रिकाली ज्ञायक भाव भी कहते हैं, त्रिकाली परम पारिणामिक जेमा कोई कर्मनो अभाव अने निमित्तनी अपेक्षा नथी। क्या कहा? आप कहेंगे क्षायिक भाव जो है केवल ज्ञान है, जिसको हम क्षायिक ज्ञान कहते हैं, उसमें निमित्त के यानी कर्म के अभाव की भी अपेक्षा तो लगती है ना, शायिक नाम कहाँ से बढ़ा, कर्म की तरफ से नाम दिया, उतनी तो उसमें अपेक्षा आ गई, परंतु अपना भाव कैसा है। यहाँ तो वीतराग कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे, ये तो पर्याय में प्राप्त हुआ है, परंतु स्वभाव कैसा है, राग रहित ही स्वभाव है और वो सर्वज्ञ ही स्वभाव है, वो कर्म के कारण वाला वो बात नहीं है। तो कहते जेमा कोई कर्मनो अभाव अने निमित्तनी अपेक्षा नथी एवो परम त्रिकाणी स्वभाव ने अहीं शुद्ध भाव कहे छे। यानी जो स्वभाव भाव है जीव का, उसको यहाँ शुद्ध भाव कहने में आता है। यानी जो पर्याय में विभाव रूप परिणति होने पर भी ये शुद्ध भाव कायम शुद्ध ही शुद्ध है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं, कायम त्रिकाल रहने वाला है। कोई भी पर्याय क्यों ना हो, वो निगोद पर्याय हो या हमारी मनुष्य पर्याय हो या जो कोई मुनिराज है उनकी हो, ये तो स्वभाव भाव तो सब में एक समान ही, एक सदृशी है। जैसे सिद्ध भगवान का है वैसा हमारा है, उन्होंने उस स्वभाव का लक्ष्य किया और पर्याय में वैसा प्रकट हुआ। और जब तक हमें पता नहीं है उसका, तो हमारे पर्याय तो ऐसे ही चलती रहेगी विभाव रूप। जब पता चलेगा और उसी का लक्ष्य करके उसमें स्थित उसी को जानते रहेंगे, तो पर्याय में वैसा वैसा परिणमन चालू हो जाएगा। आप कुछ बोलना चाहते हैं?
देखो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, जो स्वभाव भाव होता है, जिसको यहाँ परम परिणामिक भाव कहा है, वो हमेशा, उसको कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है, उसके किसी के अभाव की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जो जिसका स्वभाव होता है वो त्रिकाल होता है, वो किसी से बनाया हुआ नहीं है, वो है वो है। जैसे फॉर एग्जांपल जो नमक होता है वो कैसा होता है, खारा होता है, हाँ, और अग्नि कैसी होती है, उष्ण होती है, पानी कैसा है तो ठंडा पानी है। देखो पानी को पर्याय में हमने उबाल दिया, गर्म किया, इतने में चूल्हे में हमको चूल्हा बुझाना है और गर्म पानी की आवश्यकता नहीं है, वो उबलता हुआ पानी भी हम चूल्हे के अंदर लकड़ी में डालेंगे तो आग बुझती है, क्योंकि उसका स्वभाव कैसा है, शीतल है। ऐसा जो स्वभाव है वो त्रिकाल रहता है, स्वभाव के लिए किसी के निमित्त की आवश्यकता नहीं है, कर्म निकल जाए तो स्वभाव प्रकट होवे ऐसा भी नहीं है। जो त्रिकाली स्वभाव, जो स्वभाव भाव जिसको यहाँ कह रहे हैं, वो हमेशा त्रिकाली रहता है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो औदयिक भाव, क्षोभक्षमिक भाव, चायिक भाव, औपक्षमिक भाव, इसकी जो बात की है उसमें कर्मों का कहीं ना कहीं कारण लगता है। यानी औपक्षमिक में कर्म का उपशम होना चाहिए, औदयिक में कर्म का उदय होना चाहिए। जब जीवों के परिणाम होते हैं उस परिणामों को औदयिक भाव कहते हैं, जब कर्म का क्षय हो जाता है तब जीव के जो परिणाम होते हैं उसको क्षायिक भाव कहते हैं। लेकिन ये परम परिणामिक भाव जो है उसके लिए कर्मों की कोई कंसर्न ही नहीं है। कर्म तो वहाँ कुछ किसी निमित्त की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो त्रिकाली स्वभाव भाव, उसकी यहाँ बात चल रही है। देखो बार बार क्या कह रहे हैं, किसी को भी देखने के दो नजरिया होते हैं। द्रव्य को हम देख रहे हैं तो द्रव्य को देखने के दो एंगल्स होते हैं। एक द्रव्य को द्रव्य की अपेक्षा से देखना, तो उसको यहाँ परम परिणामिक भाव का, और द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा से देखना, उसको यहाँ पर ये औदयिक भाव आदि की बात की है। इस तरह से हमने देखना है कि यहाँ बात किसकी चल रही है, तो त्रिकाली स्वभाव भाव की अपेक्षा यहाँ बात चल रही है। कि किसके स्वभाव की बात चल रही है, मेरे, हाँ मेरे यानी मेरे नहीं, सबके अपने अपने, ये बात ध्यान रखना। तो अभी हमारा जरूरत, जब तक हमको त्रिकाली स्वभाव कैसा है इसका ही पता नहीं है, तो हम उसका ध्यान कैसा करेंगे, उसमें एकाग्रता कैसा करेंगे, ख्याल में है ना। इसलिए ये बहुत, क्या कहते, बहुत नामी विषय निकला है, और अच्छा हो गया कि आप इसी विषय में आए हैं। चलो
हाँ, अभी यहाँ नीचे का पैराग्राफ पढ़ते, तीसरा पैराग्राफ पेज नंबर 3। शुद्ध भाव अधिकार कहवामां आवे छे। शुद्ध भाव नो अर्थ आटलो, द्रव्य त्रिकाणी भगवान आत्मा पूर्णानंद थी भरेलो छे, अने जेमा गुण गुणी नो भेद पण नथी। क्या कहना चाहते हैं? प्रत्येक द्रव्य में गुण कितने हैं, अनंत है, परंतु ये द्रव्य और ये उसके गुण, ऐसा अगर हम कहेंगे ये अग्नि है उष्णता उसका गुण है, तो हमने उसमें भेद डाला, विकल्प हुआ, ये राग हुआ। तो कहते हैं कि जिसमें गुण और गुणी के भेद पर नहीं है, गुण नहीं है ऐसा नहीं कहा, भेद नहीं है, क्योंकि द्रव्य है वो एक वस्तु है क्या अनेक वस्तु है, एक है, तो वो अनंत गुणों का अभेद अखंड एक पिंड है, उसके भेदों पर नजर है तो अनुभव नहीं होगा। हाँ, भेदों को जानना प्राथमिक अवस्था में हम जानेंगे, ज्ञान दर्शन चारित्र हम भेद कर करके बिल्कुल विस्तार से जानेंगे, पर अनुभव के काल में भेदों पर नजर देते रहेंगे, अरे ये ज्ञान गुण का ऐसा कार्य है ये दर्शन के, तो वो तो विकल्प अवस्था है, विकल्पात्मक अवस्था है, राग की अवस्था है, वो शुभ भाव है। आत्मा के गुणों का जो अलग अलग हम विचार कर रहे हैं वो शुभ भाव है, विकल्प है, वो आत्मा यानी वो अखंड अभेद आत्मा। अभी जाना ना सब, अभी फिर जानकर फिर भेदों में क्यों उलझ रहे हैं, अब भेदों में मत उलझो, जान लिया इसमें अखंड इतने अनंत गुण है, वो उसका अभेद पिंड में हूँ, बस अब ये एक एक को ही पकड़ना है, अब वो भेदों को नहीं पकड़ना। ये कहते हैं कि जिसमें गुण गुणी का भेद भी नहीं है, शुद्ध भाव अने आत्मा शुद्ध भाव धरनार एवो भेद पंजे मानती, यानी आत्मा है और वो शुद्ध भाव को धरने वाला है, धारण करने वाला है, ऐसा भी भेद जिसमें नहीं है, कोई भी भेद नहीं। भेदों को पहले जाना, अभी उसके नजर हटाना भेदों पर से। शुद्ध भाव पवित्र त्रिकाण भाव, आहा पुण्य ने पाप आदि भाव, तेने तो शास्त्र में चपल भाव कहा छे, चंचल होते है ना, चपल, चपलाई छे, आकुलता छे, एना थी रहित जे भाव छे ए शुद्ध उपयोग छे, तो पर्याय छे, जो ऊपर की बात ऊपर किया था, पुण्य पाप से रहित जो आत्मा में स्थिरता है, शुद्ध उपयोग हुआ, वो पर्याय वाला शुद्ध भाव है, उसकी बात यहाँ नहीं चल रही है। पन शुद्धोपयोग ने पर्याय कोना आश्रय उत्पन्न थाय छे एनो अधिकार छे, आश्रय ने किसको जानते रहने से ये पर्याय में शुद्ध भाव प्रकट हुआ है उसकी बात है। समझानो काय शुद्ध भाव नो अर्थ पहला कर्या करियो क्यारे सांभळ्यो नथी, शू शुद्ध भाव छे, जय भगवान, भक्ति करवी पूजा करवी अने ये कुछ मालूम नहीं है, बस भक्ति में लग जाओ और फिर कुछ। हाँ, जय नारायण कहते हैं, जय भगवान कहते हैं, हाँ, यानी कहते हैं ये कुछ समझे बिना बस ये भगवान 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 नमोकार मंत्र गिन रहे, अरिहंत सिद्धों का नाम ले रहे, उसकी माला जप रहे और क्या क्या कर रहे, उपवास आदि कर रहे, परंतु इसका मालूम नहीं है मैं कौन हूँ, क्या करने लायक है और अपने आत्मा का अनुभव कैसे प्रकट होगा, ये मालूम नहीं है और हम इस क्रियाओं में उलझ रहे हैं। क्रियाओं का फल नहीं, फल तो अपने परिणामों का होता है, उसमें पुण्य परिणाम है कि पाप परिणाम है, और ये मिथ्यात्व वाला तो बहुत बड़ा पाप परिणाम है, इसलिए भगवान को भी नमस्कार करते पहले तो भगवान का स्वरूप निश्चित किए बिना उनका नमस्कार भी सच्चा नमस्कार नहीं है। यहाँ तो बात आती है नमस्कार किसको कहना, तीर्थंकरों का नमस्कार कहना किसको, जो यहाँ शुद्ध भाव की बात चल रही है ना, अपने शुद्धात्मा कारण परमात्मा, उसका लक्ष्य करके उसी में स्थित हो जाना, अपना अनुभव होना, वो वहां से नमस्कार की शुरुआत होती है, वो जिनेन्द्र भगवान का नमस्कार है, क्योंकि तभी हमने जिनेन्द्र भगवान को पहचाना। लोगों कहते तो हमारा वो आसान था, दयादान थोड़ा कर दो, वो फिर व्रत उपवास कर दो, प्रतिक्रमण कर दो और ये कुछ कुछ कर दो, वो तो आसान था, और ये आपकी ये बात हमको कठिन लगती है। तो आपने कौन सी डिग्री हासिल की बेन, कितना पढ़े, बीकॉम हुआ ना, तो डिग्री हुई ना कि नहीं हुई, हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए कितनी मेहनत लिए, कितने साल में पहले स्कूल में जाना चालू किया, रोज कितने घंटे पढ़ते थे, फिर घर में होमवर्क करते थे, फिर परीक्षाएं देते थे, उसके लिए कितना रटा, और ये मोक्ष जैसा सर्वोत्कृष्ट कार्य है उसके लिए कितना योगदान दे रहे हैं, तब कहाँ था ये कठिन है अभी मैं स्कूल में नहीं जाऊंगी, उसके बदले घर में बैठे तो अच्छा है। कोई बात नहीं, कठिन हो रहा है तो पूछना, पूछना हमको। ये हमारी बहन तो अमेरिका से सुनते, उसको तो सामने कुछ नहीं है पढ़ाने वाला, सुन सुन कर उसको तो कितना कठिन लगता होगा, है ना। कभी कभी कठिन विषय आता है, छोड़ना नहीं, उसमें पूछना कि हमको ये फिर दोबारा समझा, हम समझाएंगे आपको। आप इतने कठिन विषय में आती हो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि कितनी बातें जो मालूम नहीं थी वो मालूम पड़ने लगी ना कितनी, और अपना उपयोग भी उसमें रहता है। हम उसको जानने की जिज्ञासा से जानते रहते हैं तो दुनिया भर की कोई राग द्वेष की बातें तो अपनी नहीं होती उस समय, उतना उतने काल तक हम केवल वो सत्य स्वरूप जानने के लिए क्यूरियोसिटी जिज्ञासा पूर्वक जानते हैं। और नहीं समझ में आए तो जरूर पूछना, आना अगर समय तो बिल्कुल आना, क्योंकि नहीं समझता वो बात नहीं रखना। यहाँ से तो केवल ज्ञान ही आने वाला है, अंदर से आने वाला, बाहर से नहीं आने वाला। और हम आपको पढ़ाते इसलिए नहीं आप समझ रहे, अंदर से ही समझ में बात आती और समझेगी। कभी कभी हमको भी नहीं समझता, दो चार दिन माथा मारने के बाद समझ में आता है, है ना। अब यहाँ पढ़ते हैं, तो ये शुद्ध उपयोग की पर्याय किसके आश्रय से होती है, तो शुद्ध भाव। अभी समय हो गया, हाँ ये दो जय भगवान की बात हो गई थी। हाँ आ सेठ तो त्या अग्रेसर छे, नरम मानस छे, आ सांभळवानो प्रेम छे। केवल प्रेम से कुछ नहीं, वो समझना भी चाहिए। हाँ आ चीज कहीं बीजी छे, प्रभु शू कहिए, वर्तमान मां चालती बात करता कोई बीजी ज वाँच छे। हाँ हाँ अब बाकी बात कल, चार नंबर के पृष्ठ से शुरू करेंगे कल। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। वीरेश।